دیکھیے بھائی کتاب پر پنجم غیر منصرف و آن اسمیست کے دو سبب اسباب مناصرف درو باشد و اسباب مناصرف نہ است عدل و وصف و تانیس و معرفہ و عجم و جمع و ترکیب و وزن فعل و الف و نون زائدتان چون عمر و احمر و طلحت و زینب و ابراہیم و مساجد و معدی کریب و احمد و عمران رفش بزمہ باشد و نصب و جرب فتحا چون جاء عمر رأیت عمر و مررت بعمر. معرب کی بحث شروع ہوئی اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے، رفع، نصب اور جر. میں نے بتلایا تھا یہاں تین طرح کے نام ہیں، ایک رفع، نصب اور جر. میں تنوین کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ صحیح تلفظ آپ کو سمجھ میں آ جائے، باقی تو وقف میں تنوین گر جاتی ہے. رفع، نصب، جر، اور ایک نام ہے ضم، فتح، کسر. میں نے بتلایا تھا رفع، نصب، جر، یہ کس کے ساتھ خاص؟ معرب کے ساتھ. یاد رکھو اس کو بھئی، یاد رکھو، یہ کس کے ساتھ خاص؟ معرب. اور ضم، فتح، کسر، یہ کس کے ساتھ خاص؟ یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے. اور ضمت، فتحت، کسرت، گولتا کے ساتھ، یہ عام ہے، یہ معرب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مبنی کے لیے بھی. تو اسم کا اعراب تین قسم پر ہے، رفع، نصب اور جر. اور بتلایا تھا کہ اس میں متمکن اعراب کے اعتبار سے 16 قسم پر ہے. اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہو، یعنی جس پر اعراب آتا ہو. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ اسم تو 16 قسم پر ہے، لیکن جو اعراب ہے وہ 9 قسم پر ہے. بھائی 9 قسم پر، جیسے پہلی تینوں قسموں کا ایک ہی اعراب. پہلی تین قسمیں کون سی؟ پہلی قسم کیا؟ مفرد، منصرف، صحیح، یعنی مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو. غیر منصرف پر میں نے بتلایا تھا کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی. تو مفرد ہو، منصرف ہو اور صحیح ہو. صحیح کا کیا معنی؟ کہ آخر میں حرف علت نہ ہو. ایک صحیح آپ نے صرف میں پڑھا ہے کہ جس کے حروف اصلی یعنی فا، عین، لام کے مقابلے میں نہ تو حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں. جبکہ ایک صحیح جو ہے نحو میں ہے. نحوی چونکہ بحث کرتا ہے اعراب کے بارے میں، اور اعراب آخری حرف پر آتا ہے، لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر اعراب آتا ہے. تو بس جب آخری حرف حرف علت نہیں تو وہ صحیح ہے، اور اگر آخری حرف حرف علت ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. اور حروف علت کون کون سے ہیں؟ واو، الف اور یا. ان کا مجموعہ کیا بنتا ہے؟ وائے ان کا مجموعہ بنتا ہے. بھائی تو پہلی قسم جو ہے مفرد، منصرف، صحیح، جیسے زیدن. اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسے آئے گا؟ رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ. فتحہ نہیں، رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ. نصب کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ. اور جر کسرہ کے ساتھ. زیدن، زیدن، زیدن. دیکھو یہ جو اعراب ہیں، یہ اب جتنی قسمیں آگے بیان کریں گے، کچھ لفظی ہیں، کچھ تقدیری ہیں. لفظی وہ قسمیں جن میں تلفظ سے ہی پتا چل جاتا ہے اعراب کا. دیکھو زیدن، میں نے کیا پڑھا؟ کچھ پتا چلا؟ کیا پڑھا؟ رفع پڑھا. دیکھو سننے سے، تلفظ سے ہی آپ کو پتا چل گیا، یہ ہے اعراب لفظی. اور بعض اوقات آگے قسمیں آئیں گی جن میں اعراب کا پتا تلفظ سے نہیں چلتا، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. یہ اعراب دیکھو تینوں حالتوں میں موسیٰ کا لفظ اسی طرح رہتا ہے، تو اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. یہ آگے قسم آ جائے گی، بس فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ یہ اعراب دو قسم پر ہوگا، یا لفظی ہوگا یا تقدیری. لفظی کون سا؟ جس کا تلفظ سے ہی پتہ چل جائے، سننے سے ہی پتہ چل جائے. जी, तो पहली किस्म क्या थी? मुफ़रद मुनसरिफ साहिब। ये 16 किस्में आपको कुल हुवल्लाह की तरह याद होनी चाहिए, ये आगे आपको बेहतरीन हर जगह नह में काम आएंगी। और ये किस्में आपके जहन में होंगी तो आप आसानी से इबारत हल कर सकेंगे, एराब निकाल सकेंगे। भाई एराब का पता चल जाएगा, फिर उसको पढ़ना कैसे है तो यहां से आपको पता चल जाएगा। तो पहली किस्म क्या? मुफरद मुनसरिफ सही। दूसरी किस्म मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही। और जारी मजराए सही किसे कहते हैं? जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो और माकबल उसका साकिन हो, यानी आखिर में वाओ या आएंगे। अलिफ नहीं आ सकता भाई, क्योंकि अलिफ हमेशा साकिन ही रहता है, लेकिन वाओ और या पर हरकत आ सकती है। जैसे दलवुन और जबयुन, देखो या पर हरकत आ गई, दल वन वाव पर हरकत आ गई, लेकिन अलिफ पर कभी भी हरकत नहीं आ सकती, अलिफ हमेशा साकिन रहता है। अगर अलिफ पर कभी आपको हरकत नजर आ जाए तो वो दर असल हमजा होता है, अलिफ नहीं होता। लेकिन अलिफ की सूरत में फिर हमजा, हमजा जो है इसको कभी अलिफ की सूरत में अरबी में लिखते हैं, कभी वाव की सूरत में और कभी या की सूरत में। तो अलिफ पर जब भी हरकत आपको नजर आए वो अलिफ नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हमजा होगा। जैसे अबुन, अबुन देखो शुरू में क्या है? अलिफ, लेकिन अलिफ पर हरकत है तो ये अलिफ नहीं है, दरअसल क्या है? हमजा है भाई, जो अलिफ की सूरत में लिखा गया है। तो पहली किस्म क्या? मुफरद मुनसरिफ सही। दूसरी किस्म मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही। जारी मजराए सही किसे कहते हैं? जिसके आखिर में वो या हो और माकबल उसका साकिन हो, ये जारी मजराए सही है। जारी मजराए का क्या माना? कायम मकाम। ये कायम मकाम सही के है, यानी उसी जैसा है। जैसे मुफरद मुनसरिफ सही पर तीनों एराब आते थे, इस पर भी तीनों तरह के एराब लफ्जी आ सकते हैं। दलवन व जबयुन, दलवन व जबयन और दलविन व जबयन। देखो तीनों तरह की हरकतें व और या पर आ रही हैं। और तीसरी किस्म थी जमा मुकसर मुनसरिफ। जमा हो यानी मुफरद और तस्निया न हो, मुकसर हो यानी जमा सालिम न हो, मुस्लिमून या मुस्लिमात की तरह न हो, और मुनसरिफ हो यानी गैर मुनसरिफ न हो। तो जमा मुकसर मुनसरिफ, जैसे रिजालुन, इस पर भी तीनों तरह के अराब आएंगे लफ्जी और हरकत के साथ। जैसे रिजालुन, रिजालन, रिजालिन। जी, तो पहली तीनों किस्में, पहली किस्म क्या? मुफरद मुनसरिफ सही। दूसरी मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही। तीसरी जमा मुकसर मुनसरिफ। ये आपने बार बार दोहराना है, मैं भी इसलिए बार बार तकरार करवा रहा हूं कि कोई आपसे ये किस्में पूछे तो आपको सोचना ना पड़े, जुबान पर रवां हो। जैसे सर्फ की गर्दाने आप सैकड़ों मरतबा दोहराते थे ताकि फिर कभी ना भूलें, तो इसको भी आपने खूब दोहराना है भाई। तो इन तीनों का रफा जम्मा के साथ, नसब फतहा के साथ और जर कसरा के साथ। चौथी किस्म जो हमने पढ़ी वो जमा मुअन्नस सालिम भाई। जमा हो और जमा भी कौन सी? मुअन्नस सालिम, यानी अलिफ और लंबी ता के साथ, जैसे मुस्लिमातुन। और इसका रफा किसके साथ? जम्मा के साथ। और नसब और जर दोनों कसरा के साथ। यहां फतहा नहीं आएगा भाई, आपने हमेशा ख्याल रखना है। यहां ये इबारत में ये अलिफ ता के साथ जमा मुअन्नस सालिम आ जाए, और तुलबा अक्सर गलती करते हैं, वो उन नसब की हालत में मुस्लिमातन पढ़ेंगे भाई। लेकिन आपने याद रखना है, इस पर फतहा आ ही नहीं सकता, बल्कि इस पर नसब किस शक्ल में आता है? कसरा, यानी यूं कहें इसका नसब जर के ताबिया है। इसका नसब यानी इसका नसब किसकी तरह होता है? जर जैसा होता है। इसका नसब किस जैसा होता है? हाँ, तो लेकिन है नसब ही। जैसे देखो जा अनी मुस्लिमातुन, ये कौन सी हालत है? रफी हालत। और रई तुम मुस्लिमातिन, ये कौन सी हालत है? नस्बी हालत है। कोई एतराज करने वाला कहेगा मैं तो इस पर जर पड़ रहा हूं, आप इस पर मनसूब कैसे कह रहे हैं कि इस पर नसब है, तो आपने क्या जवाब में कहना है कि ये जर नहीं है, जर जैसी सूरत है लेकिन है ये नसब, क्योंकि ये हालत नस्बी में है, मफूल बिही बन रहा है। और आगे बताएंगे मफूल बिही क्या होता है, मनसूब होता है। तो रई तुम मुस्लिमात, इन ये कौन सी हालत में है, मुस्लिमात नस्बी हालत में है। और मरर तु भी मुस्लिमात, इन देखो ये बात जारा दाखिल है, ये क्या है मजरूर। मजरूर दो ही हैं, हमेशा याद रखना, एक जिस पर मुजाफ आ जाए, मुजाफ के आगे क्या आता है मुजाफिले, तो एक मुजाफिले मजरूर होता है और एक जिस पर हरफे जर आ जाए। इसके अलावा पूरी इबारत में आपने कहीं भी जर नहीं पढ़ना, ये दो लफ्जों पर ही जर आएगा भाई जी। तो चौथी किस्म क्या, जमा मुअन्नस सालिम, रफा किसके साथ, जम्मा के साथ, नसब और जर कसरा के साथ, जैसे हुन्ना मुस्लिमातुन व रअईतु मुस्लिमातिन व मररतु बि मुस्लिमातिन। आगे सबक देखिए भाई। पंजुम गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ का एराब आ गया भाई, याद रखो इधर देखिए, पहले तो यह समझ लें गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं। आपको बतलाएंगे कि मना सर्फ के नौ असबाब हैं, मना सर्फ के नौ, यानी यूं कहो गैर मुनसरिफ गैर इंसराफ के नौ असबाब हैं। नौ चीजें आपको बतलाएंगे, उन नौ में से कोई सी दो किसी लफ्ज के अंदर आ जाएं तो वो लफ्ज गैर मुनसरिफ हो जाता है। वो क्या होता है, गैर मुनसरिफ होता है। और गैर मुनसरिफ का हुक्म भी आपको बतलाएंगे कि उस पर कसरा भी नहीं आ सकता और तनवीन भी नहीं आ सकती। जैसे उमर का लफ्ज गैर मुनसरिफ है तो हालत रफी में पढ़ेंगे जा अनी उमारु, देखो उमारुन तनवीन में नहीं पढ़ रहा बल्कि तनवीन के बगैर पढ़ रहा हूं जा अनी उमारु। और नसब रए तो उमारा, देखो तनवीन आखिर में नहीं पढ़ रहा। और जर मरर तो बी उमारा, देखो इस पर कसरा नहीं, कसरा नहीं, इसका जर भी किस शक्ल में है, फतहा की सूरत में है। तवज्जो है, यानी ये मुस्लिमात उनके बरअक्स है, मुस्लिमात उनमें नसब जर जैसा था और यहां पर जर जो है किस जैसा है, नसब जैसा है। पढ़ें भाई जा अनी उमारु, हालत रफी है, फिर पढ़ें जा अनी उमारु रअईतु उमारा, ये कौन सी हालत है, नस्बी हालत। और मररतु बि उमारा, देखो अब हालांकि इस लफ्ज पर क्या दाखिल हो रही है, बा जा रा, और बा क्या करती है, जर देती है, तो पढ़ना तो चाहिए था बि उमारिन, कसरा भी आना चाहिए था और तनवीन भी, लेकिन गैर मुनसरिफ पर ना कसरा आता है और ना तनवीन आती है, तो लिहाजा इस पर इसको इसका जर भी फतहा की सूरत में आता है। तो मरर तो भी उमारा, अब आपसे कोई कहे भाई कि ये मरर तो भी उमारा, इस उमर का एराब बतलाओ, आप क्या कहेंगे जी जी, आपसे एराब पूछ रहा हूं मैं, मरर तो भी उमारा, उमर का एराब बताओ। इस वक्त जो मैं जुमला बोल रहा हूं, मरर तो भी उमारा जर है, आंखें बंद करके कहें जर है, वो कहेगा भाई जर कहां से है, मैं तो इस पर जबर पड़ रहा हूं, आप कहना इसका जर किस शक्ल में आता है, इसका जर आता ही जबर की शक्ल में है, लेकिन ये मजरूर है, हालत जरी में है। भाई कैसे पता चला ये हालत जरी में है, इस पर बा दाखिल हो रही है, क्या दाखिल हो रही है, और हमने नह में पढ़ा है जिस लफ्ज पर हरफे जर दाखिल हो जाए या जो मुजाफिले हो वो हमेशा क्या होता है, मजरूर। हां फिर उसका जर मुख्तलिफ सूरतों में आएगा, ये 16 किस्में आपको बता रहे हैं, कभी जर कसरा और तनवीन के साथ आएगा मरारतु बिज़ैदिन, देखा, और कभी जर फतहा की सूरत में आएगा मरारतु बिउमारा, और कभी और सूरतों में भी आएगा जो आगे आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये है जर ही, क्योंकि बा जारा आ गई और बा जारा जिस लफ्ज़ पर भी दाखिल हो वो क्या होगा? मजरूर। हां, जर उसका मुख्तलिफ शक्लों में आ सकता है। तो गैर मुनसरिफ उसे कहते हैं जिसमें नौ असबाब मना सर्फ में से कोई से दो असबाब आ जाएं, या कोई एक ऐसा सबब आ जाए जो दो के कायम मकाम है। गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं जिसमें असबाब मना सर्फ नौ है, नौ ये आपको अभी बतलाएंगे, और उन नौ में से दो असबाब मना सर्फ किसी लफ्ज में आ जाएं तो वह लफ्ज क्या बन जाता है? वह लफ्ज गैर मुनसरिफ होता है। चाहे दो सबब आ जाए उन नौ में से, या कोई एक आ जाए ऐसा जो दो के कायम मकाम है, जो दो के, हां वो मैं भी आपको तफसील बयान करता हूं। देखिए भाई किताब पर कहते हैं पंजुम गैर मुनसरिफ, पांचवी किस्म जो है इसमें मुतमक्किन की वो गैर मुनसरिफ है। वह आन इसमें, और वो इसम है कि दो सबब अज असबाब मना सर्फ दरो बाशत, के दो सबब अज असबाब मना सर्फ, के असबाब मना सर्फ में से दो सबब, तर्जमा आखिर से कर रहा हूं, दो सबब अज असबाब मना सर्फ, असबाब मना सर्फ में से दो सबब दरो बाशद उसमें हो, असबाब मना सर्फ में से दो सबब उसके अंदर हो। वह असबाब मना सर्फ नुह अस्त, और असबाब मना सर्फ नौ हैं। नुह का क्या माना? नौ। वो असबाब मना सर्फ अब बतलाने लगे हैं। अदल, अदल है, वसफ है, तानीस है, मारिफा है, उजमा है, जमा है, तरकीब है, वजन फेल है, और अलिफ नून जायदतान है। मेरी किताब में हर एक पे नंबर डले हुए। अदल पर है एक, वसफ पर है दो, तानीस पर है तीन, मारिफा पर है चार, उजमा पर है पांच, जमा पर है छह, तरकीब पर है सात, वजन फेल पर है आठ, और अलिफ नून जायदतान पर है नौ। आपकी किताबों में हैं? हां, बस ये नौ सबब हैं, एक एक पर उन्होंने नंबर लगाकर वजाहत कर दी। अब इनको जरा समझ लें भाई, ज्यादा तफसील तो बड़ी किताबों में आएगी, बस इतना समझ लें। अदल का माना होता है फेरना, फेरना। तो एक लफ्ज को एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ फेर देना बगैर किसी कानून के, इसको अदल कहते हैं। एक लफ्ज को, यानी एक लफ्ज की सूरत बदलकर दूसरी सूरत दे देना, इसको कहते हैं अदल। जैसे अभी आपने लफ्ज पढ़ा उमर, उमर, उमर के बारे में कहते हैं कि ये असल में था आमिरुन, फिर इस आमिरुन से बदलकर उमर बना दिया गया। तवज्जो है, असल में क्या था? आमिरुन था, फिर दरमियान से अलिफ को खत्म कर दिया और आयन को जम्मा दे दिया और मीम को फतहा दे दिया, तो उमर बन गया। तो सूरत बदल दी या नहीं बदल दी? यह है अदल, फेर दिया। और कोई कानून है कि किस कानून के तहत यह बदला? कहते हैं कोई कानून नहीं, कानून कोई कानून नहीं, बस अरबों ने इस तरह इसको फेर दिया। अब वो इसको उमर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर अब आपसे कोई पूछे उमर के अंदर कौन सा सबब है, तो आप कहेंगे अदल है। इसके अंदर क्या है, क्या माना? इसकी सूरत कुछ और थी, अब फेर कर यानी बदल कर और सूरत बना दी गई। तो अदल का माना फेरना, यूं को बदलना, बदलना, इसको बदल दिया गया। तो यह है अदल। दूसरा सबब है वसफ, वसफ जिसको आप सिफत कहते हैं, सिफत। मसलन उर्दू में कहते हैं बहादुर आदमी, देखो ये बहादुरी उस आदमी की सिफत है। तो ये जो वसफ है, ये जो ये असबाब मना सर्फ में से है, ये वसफ क्या है? असबाब मना सर्फ में से है। जैसे आपको मिसाल देंगे अहमर, अहमर हमजा है हामीमरा, अहमर का माना सुर्ख, सुर्ख। अब यज, अब यज अलिफ बा या और ज़ाद, अब यज का माना है सफेद, सफेद। तो ये देखो ये वसफ है, ये सुरख होना और सफेद होना ये वसफ है, कोई चीज होगी जो सुरख होगी या सफेद होगी तो ये सफेदी या सुर्खी उसका वसफ है। तो ये अबयस ये क्या है? वसफ। इसी तरह अहमर ये क्या है? वसफ। एक होती है जात, एक होता है उसका वसफ। जैसे मैं कहता हूं जैद बहादुर आदमी है, तो जैद देखो एक जात का नाम है, एक शख्स का नाम है। जैसे मैं कहता हूं जैद, मसलन आपका वो साथी है, आप उसको जानते हैं, तो जैसे ही मैं उसका नाम लूंगा फौरन आपके जहन में वो साथी आ जाएगा। जैसे आपके और जमात वाले साथी हैं, किसी साथी का नाम लेते हैं कोई साथी, फौरन आपके जहन में उसकी सूरत आ जाती है कि उस साथी की बात कर रहा है। तो जैसे तो जैद क्या है? जात। और बहादुरी देखो जैद का वसफ है। अब बहादुरी का अपना वजूद नहीं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि बहादुरी को जैद से अलग करके मुझे दिखा दें? नहीं, बहादुरी तो जैद का वसफ है। जैद है तो जैद की बहादुरी भी है, जैद नहीं तो जैद की बहादुरी भी नहीं, ये उससे अलग हो ही नहीं सकता। जैसे फूल की खुशबू, फूल है तो फूल की खुशबू है, और इसी तरह वो फूल का रंग है, फूल का रंग या फूल की खुशबू फूल से अलहदा कर दें? अलहदा नहीं हो सकती। तो फूल तो जात है और उसका रंग और खुशबू उसका वसफ है। बात समझ में आ गई? तो ये जो वसफ होगा ये भी सबब बनेगा गैर इंसराफ का, ये भी सबब बनेगा गैर इंसराफ का। और ये भी इसमें याद रखना कि असल के एतबार से वसफ होना चाहिए। बहरहाल ये तो खैर अगली किताबों में बातें आ जाएंगी, अगर ना भी याद रहे कोई हर्ज नहीं, बस बुनियादी बात आपको पता होनी चाहिए कि अदल का क्या माना होता है। अदल का माना होता है बदलना, फेरना, एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ फेर देना। और वसफ जो किसी चीज की सिफत होती है, वसफ किसे किसे कहते हैं? जो किसी चीज की सिफत होती है। तानीस, तानीस यानी मुअन्नस हो, वो लफ्ज क्या हो? मुअन्नस हो। और तानीस की अलामतें आप पढ़ चुके हैं, कितनी अलामतें हैं? चार इन्होंने बयान की थी। नंबर एक गोलता, और दूसरी अलिफ मकसूरा, तीसरी अलिफ ममदूदा, और चौथी ताय मुकद्दरा। भाई या तानीस मुअन्नस का नाम वगैरह हो भाई, वो भी मुअन्नस है। अच्छा मारिफा, चौथी किस्म है मारिफा। मारिफा आप पढ़ चुके, मारिफा किसे कहते हैं? जो किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करे, जैसे ही वो बोले वो लफ्ज आप फौरन समझ जाएं किसकी बात हो रही है, और अगर आप नहीं समझे तो मालूम हो वो मारिफा नहीं है। तो मारिफा, और इसकी कितनी किस्में थी? सात किस्में। नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो आलम, नंबर तीन अस्मा इशारा, नंबर चार अस्माए मौसूला, नंबर पांच मारिफा बा नीदा, नंबर छह मुआरफ बिल्लाम, और नंबर सात इन पहले इन में से जो मारिफा बा नीदा के अलावा बाकियों में से किसी एक की तरफ जो मुजाफ हो जाए वो भी क्या उसी दर्जे का मारिफा बन जाता है। फिर दोहराओ, बार बार ये चीजें दोहराया करो, किताब के आखिर तक हम पहुंचेंगे, आपको इंशाल्लाह खुद ही अजबर हो जाएंगी। मारिफा कितनी किस्म पर? सात। नंबर एक तरतीब से तमाम जमीरें, नंबर दो आलम, फिर दोहराओ शुरू से, पहली किस्म तमाम जमीरें, नंबर दो आलम, नंबर तीन अस्माए इशारा, नंबर चार अस्माए मौसूला, नंबर पांच मारिफा बा निदा, नंबर छह मारिफा ब अलिफ लाम या मुआरफ बिल लाम कह लें, और नंबर सात इन में से किसी एक की तरफ जो मुजाफ हो जाए। और मैंने बताया था मारिफा ब निदा के अलावा बाकी जो पांच हैं उनकी तरफ कोई इसम मुजाफ हो जाए वो भी मारिफा बन जाता है। तो ये देखा, ये असबाब मनासब जिक्र कर रहे हैं। पहला क्या है? अदल। दूसरा वसफ, तीसरा तानीस, चौथा मारिफा। लेकिन याद रखना मारिफा की सात किस्मों में से सिर्फ आलम यहां मुराद है। मारिफा की सात किस्मों में से सिर्फ कौन सबब बनेगा? आलम। आलम, बाकी छह किस्में वो सबब नहीं बनेंगी गैर इंसराफ का। अगली किस्म है जी उजमा, अगला सबब है उजमा। उजमा का माना यह है कि लफ्ज आजमी जुबान का हो, वो लफ्ज किस जुबान का हो, आजमी। याद रखो अरब जो है, अरब वो अपनी, यह अरबी जो है दुनिया की फसीह तरीन जुबान है, इसमें इतने वसअत है, हर चीज का कोई ना कोई नाम है, बल्कि एक एक चीज के बीसियों नाम मिल जाते हैं। मिसाल देख लो, जैसे तलवार, उर्दू में तलवार का एक ही नाम है, अरबी में तलवार के गालिबन 80 या 200 इससे भी ज्यादा नाम है। एक ही चीज के इतने ज्यादा नाम, आप उस जुबान की वसअत का अंदाजा लगा लें भाई। या दूसरी मिसाल ले लें, शेर भाई, शेर जंगली दरिंदा जो है, शेर उर्दू में एक ही नाम है, या हो सकता है एक या दो और भी हो, एक दो नाम होंगे उर्दू में। अरबी जुबान में शेर और मुतअल्लिकात शेर जो हैं, वो वाली साहब रहमहुल्ला शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्ला, उन्होंने एक नजम की सूरत में जमा किए शेर और इसके मुतअल्लिकात के नाम, और वो 600 से ज्यादा हैं भाई। आप अंदाजा लगाइए एक जुबान में शेर और उसके मुतअल्लिकात के 600 से ज्यादा नाम हों, ये कितनी वसीअ जुबान होगी। आजकल अंग्रेजी दुनिया पर छाई हुई है, क्योंकि वो तरक्की कर गए, आगे निकल गए, और जो तरक्की कर जाता है पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है। तो पहले मुसलमान इस्लाम पर चलते थे, अल्लाह ने वो उरूज नसीब फरमाया कि पूरी दुनिया पर इस्लाम इस्लाम का उरूज था, और हर तरफ देखें ये उर्दू भी अरबी अंदाज में लिखी जाती है, फारसी भी अरबी अंदाज में लिखी जाती है, और भी कितनी ही जुबानें हैं ये अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती हैं, क्योंकि इस्लाम का उरूज था, अरबी का उरूज था, तो जुबानें इसी रस्मुल खत में लोग लिखने लग पड़े, तो ये रस्मुल खत फैलता चला गया दुनिया में। मैं बात यह कह रहा था अंग्रेजी का उरूज है, लेकिन अरबी के सामने अंग्रेजी यूं मालूम होती है जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, किसी बहुत बड़े आलिम के सामने 6-7 साल का कोई बच्चा हो, उस बच्चे के इलम का अंदाजा लगाओ और उस बड़े आलिम के इलम का अंदाजा लगाओ, तो अरबी के सामने अंग्रेजी इतनी छोटी सी जुबान है, इतनी वसअत है अरबी जुबान में। तो अरब जो है वो अपनी जुबान पर नाज करते थे, फखर करते थे, अपने आप को अरब कहते थे, तो बाकी सारी दुनिया वालों को वो अजम कहते थे। अजम का माना है गूंगे, यानी हमारी जुबान तो ऐसी जुबान है, बाकी तुम जो कुछ बोलते हो गूंगों जैसा ही है, हमारी जुबान के सामने कोई हैसियत ही नहीं तुम्हारी जुबानों की। तो बाकी दुनिया वालों को वो अजम कहते थे, गूंगे। बात चल रही थी उजमा की, उजमा कोई अजमी लफ्ज हो, यानी गैर अरबी लफ्ज हो, बात समझ में आ गई, गैर अरबी लफ्ज। तो गैर अरबी लफ्ज जब अरबी में आएगा तो उसके अंदर उजमा सबब पाया जाएगा, तो वो सबब बनेगा गैर मुनसरिफ होने का। छठा है जमा आपने पढ़ा भाई, एक जमा मुकस्सर है, एक जमा सालिम है, फिर इस जमा मुकस्सर के अंदर एक वजन है जिसको जमा मुंतहल जुमुआ कहते हैं। तवज्जो है, क्या कहते हैं? यह आपने याद रखना है, जमा मुंतहल जुमुआ, वो जमा जो जमाओं की जिस पर इंतहा होती है, और वो जमा है जिसमें दो हरूफ के बाद अलिफ आता है और अलिफ के बाद फिर दो या तीन हर्फ आते हैं, जैसे मसाजिद। तवज्जो है, मस्जिद की जमा क्या? मसाजिद। देखो मस्जिद में अलिफ था नहीं, लेकिन मसाजिद के दरमियान में अलिफ आ गया, यह है अलिफ जमा। यह क्या है भाई? अलिफ जमा क्या माना भाई? जमा बनाने के लिए अलिफ लाए हैं दरमियान में, तो इसको क्या कहेंगे? अलिफ जमा। तो मस्जिद की जमा क्या? मसाजिद। देखो मसाजिद के अंदर दो हरूफ हैं, फिर अलिफ है, और अलिफ के बाद कितने हरूफ? दो हरूफ, जीम और दाल। तो यह है जमा मुंतहल जुमुआ, कि अलिफ जमा के बाद दो हरूफ आ जाएं, या अलिफ जमा के बाद तीन हरूफ आ जाए, जैसे मिसबाह, मिसबाह स्वाद के साथ, मीम स्वाद बा अलिफ और हा, मिसबाहुन, ये चराग को कहते हैं, दिया, भाई दिया रोशनी के लिए जो जलाते हैं। इस मिसबाह की जमा है मसाबीह, भाई मसाबीह, देखो इसमें भी क्या आया, अलिफ जमा, और अलिफ जमा के बाद कितने हरूफ हो गए, तीन, बा या और हा। तो ये है जमा मुंतहल जुमूर, इसको, इस जमा को क्या कहते हैं, जमा मुंतहल जुमूर, फिर दोहराओ, जमा मुंतहल जुमूर, किसे कहते हैं कि अलिफ जमा के बाद दो या तीन हर्फ आ जाए, ये जमा मुंतहल जुमूर है। तो जमा से ये वाली जमा मुराद है, हर जमा नहीं, रजुल की जमा क्या रिजाल, वो मुराद नहीं, असद की जमा क्या उस्दुन उस्द, ये जमा मुराद नहीं, किताब की जमा क्या कुतुब, ये जमा मुराद नहीं, बल्कि कौन सी जमा मुराद है, जमा मुंतहल जुमूर, और जमा मुंतहल जुमूर किसे कहते हैं, जिसमें अलिफ जमा के बाद दो या तीन हर्फ आ जाएं, दो या तीन हर्फ आ जाएं। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपने मुझे बतलाना है, दवाबह, दवाबह जमा है दाबतुन की, दवाबह जी, ये जमा मुंतहल जुमूर है या नहीं है, है, कैसे, अलिफ के बाद दो हर्फ आने चाहिए, यहां तो अलिफ के बाद एक ही हर्फ है जी, जवाब, भाई ये दो हर्फ हैं, दवाब बह, देखो ये बा मुशद्दद है, और हर्फ मुशद्दद दरअसल दो हर्फ होते हैं, दवा, देखो आप आराम से अदा करें, दवाब बह, देखो पहली बा साकिन, दूसरी बा मुतहर, दवाब बह, तो ये अलिफ के बाद अगर हर्फ मुशद्दद आ जाए तो ये भी दरअसल दो हर्फ हैं। तो असबाब मना सर्फ में जमा भी है, जमा से कौन सी जमा मुराद, जमा मुंतहल जुमूर, और फिर इसमें याद रखना कि ये जमा खुद दो सबबों के कायम मकाम है, ये जमा यानी जिस जो लफ्ज इस वजन पर आ जाए, यानी जमा मुंतहल जुमूर का सीगा हो तो वो गैर मुनसरिफ आपने पढ़ना है, दूसरा सबब तलाश करने की जरूरत नहीं, बस एक सबब आ गया, कौन सा सबब, जमा, जब जमा मुंतहल जुमूर, तो अब ये कितने सबबों के कायम मकाम, दो, इन्होंने बतलाया था ना कि गैर मुनसरिफ वो लफ्ज है जिसमें नौ असबाब मना सर्फ में से कितने आ जाएं, दो आ जाएं, तो यहां आपने दूसरा नहीं तलाश करना, बस ये एक ही सबब कितने के कायम मकाम, दो के कायम मकाम, ये दो के बराबर है। इसी तरह ये जो तानीस आई भाई पीछे, तानीस, तानीस भी सबब था गैर इंसराफ का, आपने पढ़ा, इस तानीस में आपने बताया तानीस की कितनी अलामतें, चार, नंबर एक गोलता, नंबर दो अलिफ मकसूरा, नंबर तीन अलिफ ममदूदा और ताय मुकद्दरा। इसमें भी याद रखना ये जो तानीस वाला अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा ये भी दो सबबों के कायम मकाम हैं। जब तानीस आ जाए किसके साथ, अलिफ मकसूरा के साथ या अलिफ ममदूदा के साथ, तो फिर आपने दूसरा सबब तलाश नहीं करना, ये सबब खुद ही कितने के कायम मकाम, दो के कायम मकाम, लिहाजा वो लफ्ज गैर मुनसरिफ पढ़ना है। आगे देखिए तरकीब, भाई सातवां सबब है तरकीब, तरकीब आप पढ़ चुके हैं, मुरक्कब मना सर्फ आपने पढ़ा था, जैसे बालाबक्का, बालाबक्का, तो ये भी एक सबब है गैर इंसराफ का, बात समझ में आ गई। आगे है वजन फेल, आठवां सबब है गैर इंसराफ का वजन फेल, भाई यानी फेल वाला वजन हो, फेल के औजान आपने पढ़े, गर्दाने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, जरा बाई यजरिबु जरबन फहुआ जारिबुन, वजूरी बाई यजरिबु जरबन, इसी तरह यजरिबु यजरिबान यजरिबून, इसी तरह मजहूल है जुरिबा जुरिबा जुरिबू, इसी तरह मुजारे मजहूल है युजरबु युजरबान युजरबून। तो ये जो फेल के औजान हैं ये भी सबब बनते हैं गैर इंसराफ का, इनकी वजह से भी लफ्ज क्या बनता है गैर मुनसरिफ बनता है, ये जो फेल के औजान हैं। वह अलिफ नून जायदातान, और नौवां सबब है अलिफ नून जायदातान, किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ नून आ जाएं और वो अलिफ नून हर्फे असली ना हो बल्कि जायद हो। हर्फे असली किसे कहते हैं? जो फाइन लाम के मुकाबले में हो। तो जो फाइन लाम के मुकाबले में ना हो वो अलिफ नून लफ्ज के आखिर में आ गए तो ये सबब बनेंगे गैर मुनसरिफ होने का। अदल का पता चल गया। अदल किसे कहते हैं? लफ्ज लफ्ज को बदलना एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ। वसफ किसे कहते हैं? किसी चीज की जो सिफत होती है। तानीस जो मुअन्नस हो और इस तानीस के अंदर अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा वो दो सबबों के कायम मकाम है। दोहराओ जुबान से, तानीस के अंदर जो अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा है वो दो सबबों के कायम मकाम है। इसी तरह मारिफा, भाई मारिफा से कौन सी किस्म मुराद? आलम मुराद है, बाकी किस्में नहीं। उजमा का क्या माना? हाँ हाँ हाँ, गैर अरबी लफ्ज। उजमा का क्या माना? गैर अरबी लफ्ज। हमारी उर्दू का कोई लफ्ज अरबी में चला जाए तो देखो ये गैर अरबी है। अंग्रेजी का कोई लफ्ज अरबी में आ जाए तो देखो ये गैर अरबी है। जैसे देखो, जैसे देखो टेलीविजन, टेलीविजन देखो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, इसी को अरबी में ले गए तो कहते हैं टेलीफिज्यून। क्या कहते हैं? देखो अब आपसे कोई पूछे ये टेलीफिज्यून अरबी है या आजमी, तो आप कहेंगे आजमी लफ्ज है, यानी गैर अरबी है, किसी और जुबान से अरबी में आया है। तो इस तरह और जुबानों के अल्फाज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तो वो आजमी है, तो उनमें उजमा है। बात समझ में आ गई। जमा, जमा से क्या मुराद है? जमा मुंतहल जुमो। जमा मुंतहल जुमो कौन सा सीगा है? अलिफ जमा के बाद दो या तीन हर्फ आ जाएं और या एक हर्फ हो लेकिन वो मुशद्दद हो। तरकीब से कौन सी तरकीब मुराद है? मुरक्कब मना सर्फ। मुरक्कब मना सर्फ, मुरक्कब मना सर्फ याद है? बाल बक्का, दो बाल अलग लफ्ज था, बक्का अलग लफ्ज था, दोनों को जोड़कर मिला दिया तो ये बाल बक्का। अगला है वजन फेल। वजन फेल का क्या माना? फेल वाला वजन हो जो गर्दानों में आपने पड़े हैं। और अलिफ नून जायदा तान, इससे क्या मुराद है? ऐसा अलिफ और ऐसा नून जो जायद हो। क्या माना जायद हो? हर्फे असली ना हो, यानी फाइन लाम के मुकाबले में ना हो। अब देखिए भाई मिसालें देने लगे हैं। चूं रो मारो, ओ मारो ये गैर मुनसरिफ है। ओ मारून तनवीन नहीं पढ़नी भाई, ओ मारो, और नीज इस पर कसरा भी नहीं आ सकता। हां एक बात याद रखना, कीमती बात, गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम आ जाए, क्या आ जाए? तो फिर कसरा आ जाएगा। गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाए तो फिर उस पर कसरा आ जाएगा, लेकिन तनवीन नहीं, क्योंकि तनवीन तो अलिफ लाम के साथ जमा नहीं हो सकती। तनवीन और अलिफ लाम इकट्ठे नहीं होते। अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन नहीं आती, और तनवीन हो तो फिर अलिफ लाम नहीं होता। तो गैर मुनसरिफ पर जब क्या आ जाए? अलिफ लाम, तो फिर कसरा आ जाएगा, कसरा आ जाएगा। और नीस एक और बात याद रखना कि गैर मुनसरिफ जब मुजाफ हो जाए फिर भी कसरा आ जाएगा। बस ये जाब्ता याद रखना, आगे जहां इस्तेमाल आएगा वहां आपको पता लग जाएगा। बस इतना याद रखें कि गैर मुनसरिफ पर तनवीन तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती, कसरा दो सूरत में आ सकता है। कौन सी दो सूरतें? या उस पर अलिफ लाम आ जाए या वो क्या बन जाए? मुजाफ बन जाए, यानी आगे इसके मुजाफिले आ रहा हो। अब देखिए भाई ओ मारो तनवीन पढ़ेंगे नहीं, क्यों? गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पर कसरा भी नहीं और तनवीन भी नहीं। अच्छा अब दो सबब कौन से हैं? उमरो, एक तो अदल है, मैंने अभी बताया उमर असल में क्या था? आमिर। तो एक इसके अंदर अदल है, और कितने सबब चाहिए? दो सबब चाहिए फिर गैर मुनसरिफ बनेगा, एक सबब से गैर मुनसरिफ नहीं बनता। तो एक तो है इसमें अदल, दूसरा आलम है, नाम है, नाम है, तो ये गैर मुनसरिफ। व अहमारो, احمارو, احمر کا کیا معنی؟ سرخ رنگ. جی سرخ. تو احمر یہ غیر منصرف ہے. ایک سبب کیا؟ وصف ہے, وصف ہے, صفت ہے. دوسرا سبب, غور کرو, غور کرو اس میں. ہاں احمر, آخری حرف کو نہ دیکھیں, احمر. اکرم, اکرمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ تو یہ اکرم, آخری حرف کو چھوڑ دیں, اس کو ساکن ہی چھوڑ دیں. اکرم احمر, دیکھو ایک وزن ہے, تو وزن فعل بھی آیا اور وصف بھی ہے, دو سبب آ گئے, تو یہ غیر منصرف ہے. طلحہ, تو یاد رکھو ایک تو یہ علم ہے, طلحہ نام ہوتا ہے کہ نہیں طلبا کا؟ جی, تو طلحہ, اور نیز اس کے ساتھ گولتا جڑی ہوئی ہے, اور گولتا کس کی علامت ہے؟ تانیس کی. تو یہ نام تو مردوں کا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ تانیس والی گولتا جڑی ہوئی ہے, تو دو سبب ہو گئے, ایک علم اور ایک تانیس, تو یہ غیر منصرف ہے. تو طلحہ تو تنوین نہیں پڑھیں گے بھائی, طلحہ تو. آگے دیکھیے بھائی, زینب, 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 ایک تو یہ علم ہے, نام ہے بھائی, اور دوسرا تانیس ہے. کیا ہے؟ تانیس ہے, کیونکہ یہ عورتوں کا نام ہے, عورتوں کا نام ہے. تو تانیس بھی آ گئی اور علم بھی, دو سبب آ گئے, تو یہ غیر منصرف ہے. تو زینب تنوین نہیں پڑھنی بھائی. وہ ابراہیم, ابراہیم بھائی, ابراہیم اس میں کیا؟ ایک عالم ہے, نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور عجمہ ہے, عجمہ جمع نہیں بھائی, یہ جمع نہیں ہے, یہ تو نام ہے ابراہیم. تو عجمہ ہے, عجمی غیر عرب نام ہے, یہ کیا ہے؟ غیر عرب نام ہے. تو دو سبب ہو گئے, ایک عالم اور ایک عجمہ اس میں آ گئے بھائی, عالمیت اور عجمہ آ گئے اس میں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ لفظ تو قرآن میں بھی آیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے, تو وہ تو عرب ہیں, پھر آپ نے کیسے عجمی کہا ان کو؟ بھائی نہیں بھائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں سے پہلے گزرے ہیں, اور عربی زبان اس وقت دنیا میں تھی نہیں, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے عربی زبان بنتی چلی گئی بھائی. جیسے یہ اردو, 300 سال پہلے اردو کا وجود نہیں تھا, تقریباً 300 سال پہلے, پھر عربی, فارسی اور اس طرح کے کچھ لوگوں کے, یہ جو لشکر ہوتا تھا بادشاہ کا, اس میں یہ عرب, فارسی والے اور مختلف لوگ ہوتے تھے, تو ہر ایک کی اپنی زبان, تو وہ آپس میں مل کر رہتے تھے, کچھ لفظ ایک زبان کے استعمال ہو رہے ہیں, کچھ دوسری کے ہو رہے ہیں, کچھ تیسری زبان کے, کچھ چوتھی زبان کے, وہ آہستہ 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 ایک بالکل نئی زبان بن گئی. تو یہ 300 سال پہلے اردو کا وجود ہی نہیں تھا. تو اسی طرح ایک زمانہ تھا عربی زبان کا وجود ہی نہیں تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت گزرے تھے, تو وہ عرب ہوئے یا غیر عرب ہوئے؟ غیر عرب ہوئے. تو لہذا ابراہیم میں ایک سبب کیا ہے؟ یہ علم ہے, اور دوسرا سبب کیا؟ عجمہ ہے, یہ عجمی لفظ ہے, یعنی غیر عرب ہے. وَمَسَاجِدُ, جی یہ بھی غیر منصرف, اس میں کون کون سے دو سبب؟ ایک جمع منتحل جمعہ, دوسرا جی شاب. ہاں دوسرا سبب تلاش ہی نہیں کرنا, کیونکہ یہ کون سا وزن ہے؟ جمع منتحل جمعہ کا, اور یہ کتنے سببوں کے قائم مقام؟ یہ دو کے قائم مقام ہے, یہ خود ہی کہیں آ جائے تو لفظ فوراً غیر منصرف بن جائے گا. مساجدو, جی معدی قریب, معدی قریب بھائی, یہاں ترکیب ہے, ترکیب, معدی ایک لفظ ہے اور قریب دوسرا لفظ ہے, اور ان دونوں کو جوڑ کر کیا بنا دیا گیا؟ معدی قریب. تو یہ غیر منصرف ہے, غیر منصرف. ایک تو اس میں ترکیب ہے, ترکیب, دوسرا نام ہے, یہ کیا ہے؟ نام ہے. ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عمر ابن معدی قریب, یعنی معدی قریب کے بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا بھائی, تو احمد, احمد اس میں کون سے دو سبب؟ نمبر ایک, نمبر ایک عالم, سب سے پہ آسان عالم ہے, وہ تو فوراً آپ پہچان لیا کریں کہ نام ہے کسی کا, عالم ہے. دوسرا وزن فعل احمد بر وزن اکرم، آپ نے اکرما پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آپ کہیں گے اکرما، اس میں تو میم پر بھی زبر ہے، میں نے بتایا آخری حرف کو نہ دیکھیں بھائی، وہ فعل ہے اور یہ اسم ہے، تو اکرم اور یہ کیا ہے احمد جی. عمران، عمران آخری لفظ آ گیا اس میں، ایک تو یہ علم ہے نام ہے بھائی نام، اور دوسرا الف نون زائدہ تان ہے، یہ عین میم را یہ اس کے حروف اصلی، اور الف نون جو ہیں وہ زائد ہیں. دیکھیے آگے کہتے ہیں رفعش بضمہ باشد، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، اس کا رفع، کس کا رفع؟ غیر منصرف جس کی بات چل رہی ہے، غیر منصرف کا رفع بضمہ باشد ضمہ کے ساتھ ہوگا. و نصب و جر بفتحہ، اور اس کا نصب اور جر دونوں فتحہ کے ساتھ آئیں گے، جیسے جاء عمر و رأیت عمر و مررت بعمر. دیکھو اس پر کسرہ بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں آئی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ کتنی قسمیں گزر گئیں اسم کی؟ پانچ قسمیں، پانچ قسمیں. پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، تیسری قسم جمع مکسر منصرف، اور ان تینوں کا رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. اور چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. پانچویں قسم غیر منصرف، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتحہ کے ساتھ. اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں نو اسباب منع صرف میں سے کوئی سے دو آ جائیں، یا کوئی ایک ایسا سبب آ جائے جو دو کے قائم مقام ہو. دو کے قائم مقام کتنے اسباب ہیں؟ تین. تین دو کتنے؟ تین. نمبر ایک، ایک تو مؤنث ہو کس کے ساتھ؟ الف مقصورہ کے ساتھ. دوسرا مؤنث ہو کس کے ساتھ؟ الف ممدودہ کے ساتھ. اور تیسرا جمع منتحل جمع. پھر دوہراؤ بھائی، کتنے سبب ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں؟ تین. نمبر ایک تانیث بالالف المقصورہ، دوسرا تانیث بالالف ممدودہ، اور تیسرا جمع منتحل جمع. یہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں. اور اسباب منع صرف کل کتنے؟ نو. نمبر ایک عدل، یہ زبانی یاد ہونے چاہیے. نمبر دو وصف، نمبر تین تانیث، نمبر چار معرفہ، پانچ عجمۃ، چھ جمع، سات ترکیب، نمبر آٹھ وزن فعل، اور نمبر نو الف نون زائدہ تان. اس طرح بار بار دہراؤ، آپ دیکھیں گے آرام سے آپ کو یاد ہو گئے. ششم اسماء ستہ مکبرہ وقتے کے مضاف باشند بغیر یا متکلم. چھٹی قسم بھائی اس میں متمکن کی، اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ چھ اسماء مکبرہ بھائی. ستہ، ستہ کا معنی ہے چھ. مکبرہ یاد رکھو، میں نے آپ کو بتلایا تھا تصغیر بھائی، تصغیر. کسی لفظ میں چھوٹا ہونے کا معنی لانا ہو تو اس کی تصغیر بناتے ہیں، اور تصغیر عموماً فعیل وزن پر لاتے ہیں. کس وزن پر؟ فعیل وزن پر. تو کتاب کی تصغیر کیا آئے گی؟ کتیب. رجل کی تصغیر کیا آئے گی؟ رجیل. اور اسد کی تصغیر کیا آئے گی؟ اس فعل وزن پر لے جاؤ، اسد کی تصغیر کیا آئے گی؟ اسید. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فعل وزن پر لے جاؤ. تو یہ تصغیر ہے، تو یہ تو ہے تصغیر جو فعل وزن پر ہے. اور وہ جو اصل اسم ہے جو اپنی اصلی حالت پر ہے، یعنی کتاب، ایک تو تصغیر ہے کتیب، کتیب تصغیر نہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ کتاب. یہ کتاب، اس کو اسم مکبر کہتے ہیں. یعنی اسم جب اپنی حالت پر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکبر. اور جب اس کی تصغیر بنائے تو وہ مصغر کہلاتی ہے یا تصغیر کہلاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسم کیا ہو؟ اپنی اصلی حالت پر ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مکبر. جیسے رجل، یہ مکبر ہے یا تصغیر ہے؟ یہ مکبر. اور تصغیر کیا؟ رجیل. کتاب مکبر ہے یا تصغیر؟ یہ مکبر ہے. اور تصغیر کیا؟ کتیب. اسد یہ کیا ہے؟ مکبر. اور اسید ये मुसग्गर या तस्गीर है, बात समझ में आ गई। तो अस्माए सिता मुकब्बरा, छह इसम हैं। मुकब्बरा क्या माना, यानी तस्गीर ना हो। मुकब्बरा क्या माना, तस्गीर ना हो। वक्ते के मुजाफ बाशन, जिस वक्त के वो मुजाफ हो, बगैर या मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ। अस्माए सिता मुकब्बरा, याद रखना अस्माए सिता छह, ये छह इसम हैं, छह इसम आगे आ रहे हैं, अबुन व अखुन व हमुन व हनुन व फमुन व जू, वजू मालिन, ये इसमें से जू मुराद है। जू कितने हो गए, अबुन एक, आखुन दो, हमुन तीन, हनुन चार, फमुन पांच, और जू छह। ये जू माल लिखा है, इसमें से सिर्फ जू मुराद है। ये छह हैं अस्माए सित्ता, और ये मुस्तस्गीर हैं या मुकब्बर हैं, तस्गीर एक भी नहीं है तो ये मुकब्बर हैं, अस्माए सित्ता मुकब्बरा। इनका एराब बतलाने लगे, लेकिन जिस वक्त ये मुजाफ हो इलावा या मुतकल्लिम की तरफ, तवज्जो है, ये हमेशा क्या हो, जिस वक्त मुजाफ हो, और मुजाफ भी गैर या मुतकल्लिम की तरफ हो, यानी किसी भी इसम की तरफ मुजाफ हो, लेकिन या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो, उस वक्त ये एराब है। अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होंगे तो फिर ये एराब नहीं जो अभी बताने लगे हैं। तवज्जो है, कौन से अस्माए सिता मुकब्बरा वक्ते के मुजाफ बाशंद बगैर या ए मुतकल्लिम, ये सारा याद करना है। इनमें से एक भी शर्त खत्म होगी तो एराब की शक्ल बदल जाएगी। कितने हैं, कितने आसमा हैं, सिता, और कौन से हैं, मुकब्बरा, और जिस वक्त के वो मुजाफ हो किसकी तरफ, या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, या की तरफ मुजाफ हो, तो फिर ये एराब नहीं है। या के अलावा किसी भी इसम की तरफ जब वो मुजाफ हो, ये वाले छह इसम और मुकब्बर हो, इनकी तस्गीर ना हो। और नीज एक और कैद भी है, मुअहदा, मुअहद हो, मुफरद हो, क्या हो, यानी तस्निया जमा ना हो। तो जब ये मुजाफ होंगे तो फिर ये एराब होगा। कि एराब क्या होगा आपको बतलाएंगे, कि इनका रफा वाओ के साथ आएगा, और नसब अलिफ के साथ, और जर या के साथ, जैसे अबू का, अबू का, देखो अब पहला लफ्ज क्या था, अब का माना बाप, अबू का आपका बाप, तो देखो मुजाफ है किसकी तरफ, काफ जमीर की तरफ, और हालत रफी में वाओ के साथ है अबू का, हालत नस्बी होती तो अलिफ के साथ होता अबा का, हालत जरी होती तो या के साथ होता अबी का। तवज्जो है, अभी तक जो एराब आप पढ़ रहे थे वहां एराब हरकत के साथ आ रहा था, जैदुन जैदन जैदिन, सिर्फ हरकत बदल रही थी। अब जो एराब है वो हुरूफ की सूरत में आ रहा है, रफा किसके साथ, वाव के साथ, नसब अलिफ के साथ, और जार या के साथ, अबू का, अबा का, और अबी का। जैसे जा अनी अबू का, रए तो अबा का, देखो हालत नस्बी है अबा का, और मरर तू भी अबी का। ये अबी का क्यों पढ़ा, ये मजरूर है, आपको कैसे पता चला मजरूर है, बा जारा इस पर दाखिल है। तो ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुअहदा एक कैद बढ़ा दें, मुअहदा का माना मुफरद हो, मुफरद यानी तस्निया और जमा ना हो। फिर दोहराएं, छठी किस्म कौन सी है, अस्माए सिता मुकब्बरा मुआहदा वक्ते के मुजाबाशन बगैर याए मुतकल्लिम, बगैर याए मुतकल्लिम। फिर दोहराओ, अस्माए सिता मुकब्बरा मुआहदा वक्ते के मुजाबाशन बगैर याए मुतकल्लिम, ये पूरा याद करना है। ये सारी शर्तें हैं, अस्माए सिता हो यही अस्माए सित्ता मुराद हैं और नहीं, मुकब्बरा हो यानी इनकी तस्गीर ना हो, मुअहदा हो यानी मुफरद हो, तस्निया जमा इनकी ना हो, और जिस वक्त ये क्या हो, मुजाफ हो किसकी तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ, फिर इनका ये एराब है। रफा किसके साथ, रफा واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جار یا کے ساتھ، اور یہ اعراب بالحرف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ زیدن، زیدن، زیدین. وہاں بھی اعراب بدل رہا تھا، لیکن حروف بدل رہے تھے یا صرف حرکت بدل رہی تھی؟ صرف حرکت. زیدن، زیدن، زیدین، تو وہ اعراب بالحرکت کہلاتا ہے، اور یہ اعراب بالحرف کہلاتا ہے. حرف بدل رہا ہے، کبھی واو آ رہا ہے آخر میں، کبھی الف اور کبھی یا. تو ابو کا، ابا کا اور ابی کا. دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں ششم اسماء ستہ مکبرہ وقتے کے مضاف باشند بغیر یا متکلم. چھٹی قسم اسماء ستہ جس وقت کے وہ مکبر ہوں اور موحد یعنی مفرد ہوں، اور جس وقت کے وہ مضاف ہوں بغیر یا متکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف. ابن اگر اس کے ساتھ یا آ جائے تو پھر کہیں گے ابی. توجہ ہے؟ دیکھا یا کی طرح جب مضاف ہوں گے تو اعراب بدل گیا. اب تینوں حالتوں میں اسی طرح پڑھیں گے، جا انی ابی، رأیت ابی، مررت بی ابی. دیکھو بدل ہی نہیں رہا، اور کیونکہ شرط نہیں پوری. شرط کیا لگائی تھی انہوں نے؟ یا کے علاوہ کی طرح مضاف ہوں. ابو کا یہ کس کی طرح مضاف ہے؟ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے. تو وقتے کے مضاف باشند بغیر یا متکلم، جس وقت کے وہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف. چون ابن و اخن و حمن و ہنن و فمن و زو مالن. ابن اب باپ کو کہتے ہیں، اخن اخ بھائی کو کہتے ہیں، حمن ہم عورت کے جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، حمن. ہنن ہن شرمگاہ کو کہتے ہیں، چاہے مرد کی ہو یا عورت کی. فم فم منہ کو کہتے ہیں. زو زو یہ صفت بنانے کے لیے آتا ہے اس میں جنس کو کسی کی، جیسے زو مال، مال والا، مال والا. حالت رفیع میں کیا کہیں گے؟ زو مال. حالت نسبی میں زا مال، وہ واو الف سے بدل دو، زا مال. اور حالت جری میں زی مال. تو کہتے ہیں رفع شان بواو باشد، ان کا رفع جو ہے واو کے ساتھ ہوگا، و نصب با الف، اور نصب الف کے ساتھ، و جر بیا، اور جر یا کے ساتھ. چون جا ابو کا، و رأیت ابا کا، و مررت بی ابی کا. یہ سارے کر لو بھائی. دوسرا لفظ لے آؤ، ابو کا کی جگہ اخ ہے جی، کیسے پڑھیں گے؟ جا اخو کا، رأیت اخا کا، مررت بی اخی کا. جی اگلا ہے ہم. ہم عورت کے سسرالی رشتہ دار جو ہیں خاوند کی طرف، جی کیسے پڑھیں گے؟ جا حامو کا نہیں پڑھنا، حامو کی، کیونکہ کاف پر زبر ہو تو یہ مذکر کی ضمیر ہے، اور کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ مؤنث. تو تجھ عورت کے سسرالی رشتہ دار، حامو کی. حامو کی زیر کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی. کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ مؤنث کی ضمیر ہے. تو جا حمو کی، و رأیتو، باقی اسی طرح الف لاؤ، رأیتو حما کی، اور مررتو بھی حمی کی. جی آگے ہنون آیا، ہنو کا یا ہنو کی، دونوں، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کی. تو ہنو کا و ہنو کی، ہنا کا اور ہنی کا. اچھا جی فم فم، جا بس حالت رفی میں ویسے کہہ لو. ہاں میم نہیں، میم واو سے بدل دو، فو کا، فو کا. میم بھی کس سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے. فم آپ ادا کریں، فم. دیکھو میم کہتے ہوئے دونوں ہونٹ جڑ گئے یا نہیں جڑ گئے؟ اور واو بھی کس سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے. واو آپ ادا کریں، دیکھو تو میم کو واو سے بدل دیتے ہیں. یہ اصل میں تھا ہی واو، جس کو کس سے بدلا؟ میم سے. یہ اصل میں واو تھا. حالت رفی میں کیا کہیں گے؟ فو کا، فو کا. حالت نسبی میں فا کا. حالت جری میں فی کا. پھر دوہراؤ، حالت رفعی میں فو کا، फू का आपका मुंह, माना क्या बन गया आपका मुंह, और हालत नस्बी में फा का, और हालत जरी में फी का, माना वही है बस जगह बदल रही है। रफे वाले मकाम में फू का कहना है, नसब वाले मकाम में फा का, और जर वाले मकाम में फी का। इसी तरह जू माल, हालत रफी में कैसे कहेंगे जू माल, और हालत नस्बी में जा माल, और हालत जरी में जी माल। भाई बात समझ में आ गई, चलिए बस करें भाई। हासिल कलाम कि आज हमने पांचवीं और छठी किस्म पढ़ी भाई, लेकिन किस्में रोज बार 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 हम दोहराएंगे भाई, ताकि खूब आपको याद हो जाए, आपने भी खूब दोहराना है इसको जी। कुल कितनी किस्में हैं इसमें मुतमकिन की? 16 किस्में। पहली किस्म मुफरद मुनसरिफ सही, जैसे जैदुन। और दूसरी किस्म मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही, जैसे दलवुन। तीसरी किस्म जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जैसे रिजालुन। इन सब का रफा जम्मा के साथ, नसब फथा के साथ, जार कसरा के साथ। अगली किस्म चौथी जमा मुअन्नस सालिम, जैसे मुस्लिमात। इसका रफा जम्मा के साथ, नसब और जार कसरा के साथ। अगली किस्म गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं? जिसमें दो असबाबें मना सर्फ आ जाएं, या ऐसा सबब, एक ऐसा सबब आ जाए जो दो के कायम मकाम हो। और असबाबें मना सर्फ कितने? नौ हैं। नंबर एक आदल, नंबर दो वसफ, नंबर तीन तानीस, नंबर चार मारिफा, नंबर पांच रुजमा, नंबर छह जमा, नंबर सात तरकीब, नंबर आठ वजन फेल, नंबर नौ अलिफ नून जायदा तान। इनमें से कितने सबब हैं जो दो के कायम मकाम हैं? तीन। कौन कौन से? नंबर एक तानीस बालिफ मकसूरा, नंबर दो तानीस बालिफ ममदूदा, और नंबर तीन जमा मुंतहल जुमोर जो है। और गैर मुनसरिफ का हुक्म क्या है? उस पर कसरा भी नहीं आ सकता और तनवीन भी नहीं आ सकती। और इस पर जर किस शक्ल में आता है? फतहा की सूरत में है जर ही, लेकिन सूरत उसकी कैसी होती है? फतहा। लिहाजा आपसे कोई कहे मरर तू बी ओ मारा, ये कौन सी हालत है? आप ये जबर को ना देखें, आप देखें इस पर क्या दाखिल है? बा। और बा जिस पर भी दाखिल होती है उसको जर देती है, तो ये कौन सी हालत में? हालत जरी में। अब अगर कोई एतराज करे कि ये मजरूर कैसे है, इस पर तो मैं जबर पढ़ रहा हूं मरर तू बी ओ मारा, तो आप जवाब में क्या कहेंगे कि ये जर ही है, लेकिन इसकी सूरत किस जैसी है? फतहा जैसी, लेकिन ये है जर ही भाई, तो मजरूर ही है ये। और गैर मुनसरिफ पर दो सूरतों में कसरा भी आ सकता है, तनवीन तो नहीं आ सकती लेकिन कसरा आ सकता है। वो कौन सी दो सूरतें? नंबर एक जब इस पर अलिफ लाम आ जाए, या दूसरी सूरत जब ये मुजाफ बन जाए। उसके बाद इसमें मुतमक्किन की छठी किस्म पड़ी थी, वो कौन सी किस्म है? अस्माए सिता मुकब्बरा मुआहदा, जिस वक्त के वो मुजाफ हों, किसकी तरफ? या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ। और अस्माए सिता मुकब्बरा कौन से हैं? नंबर एक अबुन, आगे अखुन और हमुन और हानुन और फमुन और जुमाल, यानी जू है। बात समझ में आ गई, चलिए बस। भाई हादा हुल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।